दिन भर 15 नवंबर शुक्रवार, मैं हूं कुलदीप मिश्र। महाराष्ट्र में सरकार गठन पर आगे बढ़ी एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस, कार्यकाल पूरा करने का दावा किया।
हमने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया है, अपने नेताओं को भेजा है दिल्ली में, पवार साहब कांग्रेस के नेता बैठेंगे।
सबरीमला मंदिर में दर्शन के लिए जाने वाली महिलाओं को इस बार नहीं मिलेगी सुरक्षा। और रेहान फजल की विवेचना में सुनिएगा नेहरू की जिंदगी के गैर सियासी किस्से।
दफ्तर जा रहे थे तो कार पंक्चर हो गई और पंडित जी बाहर निकलाए, चलने लगे, इतने में सरदार जी थे एक टैक्सी वाले से, भागे हुआ पाँव लेट गया, हजूर आज आप मेरी टैक्सी में चलिए।
बात करेंगे मयंक अग्रवाल के दोहरे शतक की भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार कमलेश मठेनी से। महाराष्ट्र में एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस के बीच सरकार बनाने को लेकर कोशिशें तेज हो गई हैं। तीनों राजनीतिक दल एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर सहमति बनाने के भी प्रयास कर रहे हैं। इसे लेकर तीनों दलों के नेता लगातार एक दूसरे के संपर्क में हैं। वहीं एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी कहा है कि सरकार जरूर बनेगी और पूरे 5 साल चलेगी। चिली में सरकार और विपक्षी दल संविधान बदलने को लेकर जनमत संग्रह कराने पर सहमत हो गए हैं। करीब एक महीने के गृह युद्ध के दौरान प्रदर्शनकारियों की ये मुख्य मांग थी। जनमत संग्रह अगले साल अप्रैल में किया जाएगा। इसमें पूछा जाएगा कि क्या संविधान को बदलना चाहिए और अगर हाँ तो कैसे एक नए संविधान का प्रारूप बनाया जाना चाहिए। चिली का वर्तमान संविधान जनरल औगुस्तो पिंशे के शासन के दौरान से लागू है। आलोचकों का कहना है कि मौजूदा संविधान सार्थक सामाजिक और आर्थिक बदलाव को रोकता है। हांगकांग के एक अधिकारी पर लंदन यात्रा के दौरान हुए हमले को लेकर चीन ने ब्रिटेन की कड़ी निंदा की है। चीन ने इसे भयावह हमला बताया है। हांगकांग के जस्टिस सेक्रेटरी टेरेसा चेंग को लंदन में विरोध प्रदर्शनकारियों ने घेरने की कोशिश की थी। इस दौरान वो गिर गई और उनके हाथ में चोट लग गई। हालांकि ये साफ नहीं है कि उन्हें धक्का दिया गया या नहीं। बीजिंग में चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गंग शुवांग ने इस हमले के लिए ब्रिटेन के नेताओं को जिम्मेदार ठहराया है।
这起骇人听闻的袭击香港特区政府。
मुझे हांगकांग के उच्च स्तरीय अधिकारी पर ब्रिटेन में हुए हमले पर ध्यान दिलाने की जरूरत है। ये सीधे तौर पर ब्रिटेन के कुछ राजनेताओं से जुड़ा है जो चीन विरोधियों को एक मंच दे रहे हैं और हांगकांग में अराजकता पैदा करना चाहते हैं। अगर इन तरीकों में बदलाव नहीं किया गया तो ये खुद उन्हें नुकसान पहुँचाएगा। ये थे चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। इटली के वेनिस में सेंट मार्क्स स्क्वायर में एक और ज्वारभाटे के कारण फिर से बाढ़ आ गई है। हालांकि इस हफ्ते की शुरुआत के मुकाबले बाढ़ के पानी का स्तर कम है, लेकिन ये अब भी पिछले दशकों में सबसे बुरा है। करीब 2/3 शहर पानी से भर गया है। वेनिस के मेयर ने सेंट मार्क्स स्क्वायर को बंद कर दिया है। सोशल मीडिया पर डाले गए एक वीडियो में उन्होंने कहा कि बाढ़ के कारण ये जगह असुरक्षित हो गई है। मुझे सेंट मार्क्स स्क्वायर को बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। मैंने स्थानीय पुलिस को इसके आदेश दे दिए हैं। हम लोगों की सुरक्षा के लिए स्क्वायर को बंद करेंगे। ये थे वेनिस के मेयर के शब्द। श्रीलंका के मुख्य मतगणना केंद्रों पर कम से कम 50 चुनाव अधिकारियों को फूड पॉइजनिंग के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया है। श्रीलंका में कल राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान होना है। चुनाव अधिकारियों का कहना है कि अगर उनकी हालत में सुधार नहीं होता है तो मतगणना के लिए रिजर्व स्टाफ का इस्तेमाल किया जाएगा। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। बुरुंडी में विपक्षी दल की एक नेता का शव एक जंगल में मिला है। ये शव सीएनएल पार्टी की महिला इकाई की उप प्रमुख मैरी क्ले नियोन गैरे का है। अधिकारियों को संदेह है कि उनकी हत्या से पहले रेप किया गया था। सीएनएल पार्टी अगले साल होने वाले चुनाव से पहले अपने सदस्यों के खिलाफ हिंसा होने के आरोप लगाती रही है। दक्षिण अफ्रीका एयरवेज ने अपने कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने के चलते अपने विमानों की उड़ान को स्थगित कर दिया है। इस सरकारी एयरलाइन के कर्मचारी वेतन बढ़ाने और नौकरी से निकाले जाने जैसे मुद्दों के कारण हड़ताल पर हैं। सरकार का कहना है कि नुकसान में जा रही इस एयरलाइन को बचाने के लिए कड़े सुधारों की जरूरत है। बीबीसी समाचार।
Yeah. ये बीबीसी हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं शाम की सभा दिन भर रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल एप्लीकेशन पर भी लाइव। मेरा नाम है कुलदीप मिश्र। महाराष्ट्र में गैर बीजेपी दलों ने सरकार गठन को लेकर ठोस प्रगति का दावा किया है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा है कि उनका दल शिवसेना और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाएगा और ये सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। तीनों दलों के बीच साझा न्यूनतम कार्यक्रम का ड्राफ्ट भी तैयार हो गया है। अभी इस पर आखिरी बैठक दिल्ली में होनी है। विनीत खरे की रिपोर्ट।
महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगने के बाद वहां सरकार बनाने की कोशिशें जारी हैं। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने आज कहा कि महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस सरकार बनाएंगे और 5 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के उस बयान पर कि वो दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे, शरद पवार ने कहा,
देवेंद्र जी को जानता हूं कुछ सालों से, मगर मुझे ये मालूम नहीं था कि ज्योतिष शास्त्र के भी अभ्यास हो रहे। तो मिनिमम कॉमन प्रोग्राम तैयार करने के लिए वहाँ बातें चालू है, वो पूरे होने के बाद इस बारे में बता सकते हैं। और मिनिमम कॉमन प्रोग्राम में एक अंडरस्टैंडिंग रीच होने की आवश्यकता है, वो होने के बाद ही आगे का नक्शा बनेगा। ऐसा मतलब एक बार प्रोसेस शुरू होगी तो प्रोसेस शुरू हो गई, इससे रास्ता आज नहीं कल निकलेगा, चिंता मत करो। ज्योतिष चुनाव की कोई संभावना नहीं, ये सरकार बनेगी, 5 साल चलेगा।
शरद पवार ने कहा कि तीनों पार्टियां एक कॉमन मिनिमम कार्यक्रम के एजेंडे पर काम कर रहे हैं, जिससे सरकार बनाने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। रिपोर्टों के मुताबिक तीनों दलों में एक ड्राफ्ट पर सहमति बन गई है। पिछले हफ्ते भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इस बीच एनसीपी प्रवक्ता नवाब मलिक ने कहा है कि अगली सरकार में मुख्यमंत्री शिवसेना का होगा। समाचार एजेंसी ANI से बातचीत में उन्होंने कहा,
जिस तरह से प्रशासन पूरी तरह से महाराष्ट्र में ठप है, उसे वे चुस्त दुरुस्त करें। किसान हो, गरीब हो, मजदूर हो, मरीज हो, सबको जो मदद मिलनी चाहिए उसको कहीं ना कहीं राज्यपाल महोदय उसे ठीक करने का काम करें। इस मांग को लेके हम राज्यपाल महोदय से कल मिलेंगे। हमने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया है, अपने नेताओं को भेजा है। दिल्ली में पवार साहब, एनसीपी के नेता, कांग्रेस के नेता बैठेंगे। अगर सहमति कांग्रेस में बन गई कि वे सरकार में शामिल होंगे, उसके बाद चीज़ें आगे बढ़ेगी। और जो कार्यक्रम बना है वो सारे नेताओं के पास भेजा गया है और सारे नेता उसमें जब निर्णय ले लेंगे कांग्रेस एनसीपी के लोग, तब बातें आगे बढ़ेंगी।
उधर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने मुख्यमंत्री पद की दावेदारी पर कुछ अलग कहा। उनका कहना था कि अगर किसी और से मुख्यमंत्री पद की मांग उठती है तो उन्हें इस बारे में सोचना होगा। विनीत खरे, BBC दिल्ली।
केरल स्थित सबरीमला मंदिर के कपाट कल से दर्शन के लिए खुल जाएंगे, लेकिन इस दौरान वहां जाकर परंपरा को चुनौती देने की महिला कार्यकर्ताओं की योजना को बड़ा झटका लगा है। केरल सरकार में मंत्री के सुरेंद्रन ने साफ कहा है कि इस बार प्रदेश सरकार पिछली बार की तरह महिला श्रद्धालुओं को सुरक्षा मुहैया नहीं कराएगी। हालांकि महिला संगठन अब भी हिंदू संगठनों का विरोध करने के अपने रुख पर कायम है। केरल से इमरान कुरैशी की रिपोर्ट।
केरला के कुछ महिला संगठनों की उम्मीद थी कि स्वामी अय्यप्पा के दर्शन करने के लिए इस समय भी केरला सरकार उन्हें मदद करेगी, लेकिन केरला के देवस्वम बोर्ड के मंत्री कड़कमपल्ली सुरेंद्रन ने इन अपेक्षाओं पर ठंडा पानी डाल दिया। सुरेंद्रन ने पत्रकारों से कहा, सबरीमाला उन लोगों के एक्टिविज्म की जगह नहीं है, अगर वो जाना ही चाहेंगी तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट से इजाजत लेने के बाद ही पुलिस सुरक्षा दी जा सकती है। ये थे कड़कमपल्ली सुरेंद्रन के शब्द। ये बयान तिरुवनंतपुरम में पुलिस और कानूनी अफसरों के साथ एक अहम बैठक के बाद आया। सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला 7 सदस्यों वाली बेंच को भेज दिया है। हालांकि 5 सदस्यों वाली पीठ ने कल पिछले साल के फैसले पर कोई रोक नहीं लगाई है। पिछले साल कोर्ट ने 10 और 50 साल की उम्र की महिलाओं पर सबरीमला पर प्रार्थना करने की रोक हटा दी थी। बहरहाल रेनेसांस महिला संगठनों की लिबिन CS ने BBC को बताया, हम 2-3 महिलाएं तो जाएंगे ही, अगर हमें कोई सुरक्षा नहीं दी जाती है तो हमारे संगठन से एक बड़ा समूह वहां प्रार्थना करने जाएगा। ये थे लिबिन CS के शब्द। लिबिन के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर से नहीं कहा है कि पिछले साल का फैसला रोका गया है। दूसरी तरफ BJP के नेताओं ने स्पष्ट कर दिया है कि 50 साल से कम उम्र की महिलाएं इस समय पिछले मंडला सीजन में हुई ज्यादती ना दोहराएं। बीजेपी के नेता एम टी रमेश ने बीबीसी से बातचीत में बताया,
द लेटेस्ट वर्डिक्ट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाइज दैट,
कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वो अपने ही फैसले पर पुनर्विचार कर रहा है, इसीलिए हम सरकार से कह रहे हैं कि वो इस बार महिलाओं को सबरीमला जाने के लिए सुरक्षा ना दें। हम नहीं रोकेंगे, लेकिन अय्यप्पा के भक्त उन्हें रोकेंगे। ये थे एम टी रमेश के शब्द। सबरीमला के पहाड़ पर स्थित स्वामी अय्यप्पा का मंदिर कल शाम को मंडला मकर विलक्कु सीजन के लिए खुलने वाला है। आज के बयानों से यह स्पष्ट हो गया है कि तनाव पिछले साल जैसे ही रहेगा। इमरान कुरैशी, बीबीसी, त्रिशूर, केरला।
भोपाल गैस कांड के पीड़ितों को इंसाफ मिले, इसकी लड़ाई लड़ने वाले सामाजिक कार्यकर्ता अब्दुल जब्बार का कल देहांत हो गया। बीते 6 महीने से वो कई स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे। उन्हें इलाज के लिए मुंबई ले जाने की बात भी हो रही थी, लेकिन उससे पहले ही उनका निधन हो गया। उनके निधन के बाद भोपाल में उन्हें एक संघर्षशील योद्धा के तौर पर याद किया जा रहा है। शुरह नियाजी की रिपोर्ट।
अब्दुल जब्बार इस शहर के लिए वो नाम थे जिन्होंने जमीनी तौर पर गैस त्रासदी के मुद्दे को आज तक जिंदा रखा। जब्बार ने गैस पीड़ितों की लड़ाई 2-3 दिसंबर 1984 की दरमियानी रात हुए हादसे के दूसरे दिन से ही शुरू कर दी थी। हादसे में अपने माता पिता को खोने वाले जब्बार पर भी गैस ने काफी गंभीर असर डाला था, लेकिन उसके बावजूद कोर्ट कचहरी के अलावा जमीन पर भी उन्होंने पूरी दमदारी से इसकी लड़ाई लड़ी। सामाजिक कार्यकर्ता राकेश दीवान बताते हैं
कि जिस दौर में हमारा पूरा सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम इस प्रकार की भयानक त्रासदी को भूलने में लगा हो, उस समय वो आदमी ने इस मसले को जिंदा रखा, अब तक जिंदा रखा, 35 साल लगातार इसको जिंदा रखा, ये बड़ी बात है। कोई ऐसा शनिवार नहीं निकला जब जब्बार भाई यादगार शाहजहानी में नहीं हो।
वहीं उनके संघर्ष को शुरुआत से करीब से देखते रहे पत्रकार राजकुमार केसवानी मानते हैं कि अगर आज यह मुद्दा जिंदा है तो वह सिर्फ अब्दुल जब्बार की वजह से।
इस आदमी ने जितनी जद्दोजहद करके और जिस डेडिकेशन के साथ अपने आप को भुला के और भोपाल के लोगों के लिए जिस तरह की जो है स्ट्रगल किया है, जिस तरह के लड़ाइयाँ लड़ी हैं, वो बहुत बेमिसाल है। मेरी उम्र जो है अब 70 साल की होने वाली है, मैं दूसरा जैसा कोई शख्स मैंने नहीं देखा।
वहीं राजकुमार केसवानी का कहना है कि अब्दुल जब्बार ने महिलाओं के जरिए गैस पीड़ितों के हक की लड़ाई लड़ी।
मेल डोमिनेटेड सोसाइटी हो, उसमें उसने ये दिखाया कि असल ताकत जो है वो औरत जात में है। सारी लड़ाइयाँ उसने जो है मर्दों से अलग औरतों के दम पे लड़ी हैं, और उन औरतों ने क्या जिगरा दिखाया है, क्या हिम्मत दिखाई है।
हालांकि अब्दुल जब्बार ने अपने संघर्ष में लगातार आर्थिक रूप से काफी कठिनाइयों का सामना करा और अब भी कर रहे थे, लेकिन गैस पीड़ितों के हक में उठने वाली यह आवाज अब शांत हो गई है। शुरह नियाजी, बीबीसी न्यूज, भोपाल।
बीबीसी इंडिया बोल।
महाराष्ट्र में जारी राजनीतिक गतिरोध के लिए कौन है जिम्मेदार? क्या राष्ट्रपति शासन ही आखिरी विकल्प था? लोकतंत्र की सेहत के लिए क्या है इस घटनाक्रम के मायने? यही है इस बार बीबीसी इंडिया बोल का विषय। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए शनिवार 16 नवंबर शाम 7:30 से 8 बजे के बीच मुफ्त फोन करें 1811-7000 और 1811-7001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
और अब वक्त है विवेचना का। एक राजनेता और प्रधानमंत्री के तौर पर भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की उपलब्धियों और असफलताओं पर बहस हो सकती है, लेकिन ये भी सच है कि उनके मानवीय पक्ष को किसी तरह नकारा नहीं जा सकता। कल जवाहरलाल नेहरू की 130वीं वर्षगांठ थी। इस मौके पर उनके जीवन के कुछ दिलचस्प पहलुओं को याद कर रहे हैं रेहान फजल आज की विवेचना में।
लेकिन आखिर में फौज नहीं बचाती है किसी मुल्क को, न हवाई जहाज बचाते हैं। आखिर में मुल्क की हिम्मत बचाती है, मुल्क का तगड़ापन बचाता है। आखिर में मुल्क का एक एक आदमी, मर्द और औरत, जब तक अपने को एक उस हिंदुस्तान का सिपाही न समझे।
ये आवाज है भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की। बहुत कम लोग इस बात से असहमत होंगे कि नेहरू एक विशाल हृदय शख्स थे। नेहरू के देहावसान पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे क्लेमेंट एटली ने कहा था, भारत सदा ही उस व्यक्ति का ऋणी रहेगा जिसने राष्ट्र के जहाज को उसकी आरंभिक यात्रा में बहुत कम भूल चूक के साथ मार्गदर्शन दिया। नेहरू के जीवन का सबसे प्रबल पक्ष था भारत के लोगों और आम आदमी से उनका कनेक्ट। डॉक्टर जनक राज जय ने 8 वर्षों तक नेहरू के निजी सहायक के तौर पर काम किया है।
एक बार बहुत को डेलीगेशन द्वारा मिलने आए थे पंडित जी से, साउथ ब्लॉक में थे। पंडित जी लेट हो गए, लेकिन यह कि ही यूज्ड टू टेक लिटिल नैप इन लंच टाइम। केम होम और देखा कि वो जो नथू इनका सर्वेंट था वो इंतजार करते करते, क्योंकि पंडित जी का ये फरमान था कि मेरे आने से आधा घंटा पहले आप ठंडी मशीन एयर कंडीशनर इसको आधा घंटा पहले खोलो। उसने आधा घंटा पहले खोल लिया। पंडित जी का पता भी इतने बजे आते हैं, लेकिन लेट हो गए। अब वो नथू वही सो गया दरवाजे पर इंतजार करता करता। पंडित जी जब आए तो उन्होंने देखा ये सो रहा, और सिक्योरिटी वाले बड़े परेशान, क्या करें। उन्होंने कहा बिल्कुल मत छेड़ो, इसको सोए रहने दो। उसी से जंप करके ही वेंट इन हिज रूम एंड ही हैड ए नैप, चेंज हिज क्लोथ्स। जब बाहर निकले तो फिर सो रहा था, तो उसने गार्ड जो बैठे थे कि देखो एक आदमी यहाँ खड़ा रहे, जब तक ये सोया हुआ है इसको सोया रहने दो, बिल्कुल नहीं जगाना। एंड ही जंप्ड एंड ही वेंट टू द ऑफिस। सो दिस वाज हिज पर्सनैलिटी। और सारे सिक्योरिटी वाले परेशान, जब वो उठा तो उनका हैरान हो गया वो बेचारा, बड़ा हक्का भक्का, कहता घबराओ नहीं, हमारी ड्यूटी तुम्हारे ऊपर लगी हुई थी कि भाई तुम जब तक जागो नहीं तुम्हें कोई छेड़ना नहीं है।
1946 के बाद से नेहरू अपनी जेब में हमेशा 200 रुपए रखते थे, लेकिन जल्द ही ये पैसे समाप्त हो जाते थे। नेहरू के असिस्टेंट रहे एमओ मथाई अपनी किताब रेमिनिसेंस ऑफ नेहरू एज में लिखते हैं,
मैंने आदेश जारी करवाया कि कोई भी अधिकारी नेहरू को दिन में 10 रुपए से अधिक उधार न दे। फिर मैंने नेहरू के सचिव के पास प्रधानमंत्री सहायता कोष से कुछ पैसे रखवाने शुरू कर दिए। नेहरू अपने ऊपर बहुत कम धन खर्च करते थे, यहाँ तक कि उन्हें कंजूस भी कहा जा सकता था। लेकिन सेस प्रूनर की गांधी जी पर बनाई गई एक पेंटिंग को खरीदने के लिए उन्होंने 5,000 रुपये खर्च करने में 1 सेकंड का भी समय नहीं लिया था। जब 27 मई 1964 को नेहरू का निधन हुआ तो उनके पास उनका पुश्तैनी घर आनंद भवन था और उनके बैंक अकाउंट में सिर्फ उतने पैसे थे कि वो उस मकान का गृह कर चुका पाएं।
नेहरू फिजूल खर्ची बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। अगर वो अपने घर से निकल रहे हों और कोई नल खुला दिखाई दे जाए तो वो कार रुकवाकर ड्राइवर को नल बंद करवाने के लिए भेजते थे। 1956 में नेहरू सऊदी अरब के शाह के निमंत्रण पर वहां की यात्रा पर गए। नेहरू के सहयोगी रहे मोहम्मद यूनुस अपनी किताब पर्संस पैशंस एंड पॉलिटिक्स में लिखते हैं,
रियाद में हमें जिस महल में ठहराया गया उसके शयन कक्ष में ईरानी कालीनें बिछी हुई थीं। हर बाथरूम में शनेल नंबर 5 परफ्यूम की बड़ी बड़ी शीशियां रखी हुई थीं। कमरों और यहां तक कि गलियारे भी शैंडलियर्स की रोशनी में नहाए हुए थे। नेहरू अपने हाथों से सारी बत्तियां बुझाने लगे। एक दिन वो सोते समय कुछ पढ़ना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने एक टेबल लैंप की इच्छा प्रकट की। उनके अटेंडेंट ने समझा कि शायद कमरे में रोशनी की कमी है, इसलिए वो उनके लिए और ज्यादा रोशनी वाला लैंप ले आया। उसकी रोशनी को कम करने के लिए मुझे उसे एक तौलिये से ढकना पड़ा, लेकिन उसकी गर्मी ने उस तौलिये को करीब करीब जला डाला।
जवाहरलाल नेहरू की छोटी बहन विजयलक्ष्मी पंडित ने बहुत पहले बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में बताया था कि एक बार उनका जवाहरलाल नेहरू से झगड़ा हो गया था।
मैं उनसे 10 वर्ष छोटी थी, मगर चूंकि हम लोग इस तरह से पले थे तो बहस तो बहुत होती थी और मुखालफत भी होती थी, एक दूसरे से हम झगड़ा भी करते थे, मगर अंत में कुछ ऐसा होता था कि वही जो कहते थे वो मैं कर ही लेती थी। बाद में मैं सोचती थी कि बात मैंने क्यों की, खासकर जब मैं राजदूत हो चुकी थी। कई ऐसी बातें हुई कि जिनमें मैं सहमत नहीं थी अपने गवर्नमेंट से, मसलन वो हंगरी के मसले के ऊपर। मैं यहाँ थी लंदन में, मैं बुलाई गई वहाँ, मुझसे कुछ कहा गया यहाँ कहने के लिए जो कि मैं समझती थी ठीक है। फिर संयुक्त राष्ट्रों में कृष्णा मेनन ने और हमारे नेताओं ने कुछ और कहा तो मुझे बहुत बुरा मालूम हुआ, मैंने गलत उसको समझा, तो उसके ऊपर मेरी कुछ भाई के साथ थोड़ा सा झगड़ा भी हुआ। मगर वो जैसे कि मैंने बताया ना, रख रखाव बड़ा भाई कोई एक ऐसी चीज़ होता था कि चाहे भले ही मैं मानती थी कि ये मेरे प्रधानमंत्री हैं बड़े भाई नहीं हैं, मगर वो दोनों रिश्ते मिल ही जाते थे और कहना मैं मान ही लेती थी उनका।
कई नीतिगत मामलों पर सरदार से गहरे मतभेद के बावजूद नेहरू निजी रूप से उनका सम्मान करते थे। जाने माने पत्रकार इंदर मल्होत्रा ने मुझे एक दिलचस्प किस्सा सुनाया था।
सरदार पटेल का घर पंडित जी के घर के बहुत पास था, तो वो हमेशा पैदल जाते थे वहां पे, और उनको कहा था कि आपको आने की जरूरत नहीं है, जब मुझसे कुछ बात करनी है मैं आऊंगा। मौलाना आजाद जरा दूर रहते थे तो वहां मोटर में बैठ के हमेशा जाते थे, गपशप करते थे उनसे, और टेलीफोन पे ये कर्टसी थी कि फोन खुद मिलाते थे और बात करते थे उनसे। एक दिन उन्होंने एमओ मथाई जो उनके सबसे बड़े प्राइवेट सेक्रेटरी थे उनको कहा कि जरा मौलाना साहब से बात कराइए। तो जब मौलाना साहब ने फोन लिया और नेहरू आए फोन पे, तो उन्होंने कहा कि जवाहरलाल तुम्हारी उंगली में दर्द होने लग गया क्या? तो उसने मौलाना आज के बाद ये हरकत नहीं करूंगा।
वैसे तो नेहरू बहुत हंसमुख थे, लेकिन जब उन्हें गुस्सा आता था तो वो सारी हदें पार कर जाते थे। उनके सुरक्षा अधिकारी रह चुके के एम रुस्तम जी अपनी किताब आई वॉज नेहरूज शेडो में लिखते हैं,
1953 में जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मोहम्मद अली अपनी पत्नी के साथ दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरे तो उन्हें नेहरू के मशहूर गुस्से का नजारा अपनी आंखों से देखने का मौका मिला। हुआ ये कि जैसे ही जहाज की सीढ़ियां लगाई गई, वहां मौजूद करीब 50 कैमरामैन मक्खियों की तरह जहाज के चारों तरफ खड़े हो गए। जैसे ही पाकिस्तानी प्रधानमंत्री उतरे, पीछे खड़ी भीड़ भी आगे आ गई और धक्का मुक्की होने लगी। नेहरू का पारा चढ़ा तो चढ़ता ही चला गया। उन्होंने गुस्से में चिल्लाते हुए कैमरामैन के पीछे दौड़ना शुरू कर दिया। किसी एक शख्स ने नेहरू के लिए कार का दरवाजा खोला, नेहरू ने गुस्से में वो दरवाजा बंद कर दिया और फूल के एक बड़े से बुके से लोगों की पिटाई करने दौड़ पड़े। मैंने बहुत मुश्किल से उन्हें जीप पर सवार होने के लिए मनाया। नाराज नेहरू और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री जीप पर राष्ट्रपति भवन गए और उनकी लंबी कार जीप के पीछे पीछे बिना किसी सवारी के आई।
नेहरू का किसी शख्स से स्नेह दिखाने का तरीका हुआ करता था कि वो उसे अपनी इस्तेमाल की हुई कोई चीज दे दिया करते थे। उन्होंने कितने ही लोगों को अपने इस्तेमाल किए हुई टोपी, कमीजें, चप्पलें और जूते भेंट किए। लाल बहादुर शास्त्री को एक बार उन्होंने अपना इस्तेमाल किया हुआ गर्म ओवरकोट दिया था। ताशकंद में पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान से मुलाकात के समय शास्त्री ने वही ओवरकोट पहना हुआ था। डॉक्टर जनक राज जय एक और किस्सा सुनाते हैं।
राष्ट्रपति भवन से ही हजाब आता था और जब बाल बना रहे थे तो पंडित जी ने उसको कहा, देखो भाई हम वलायत जा रहे हैं, तुम्हें कुछ चाहिए वहाँ से लाएं। पहले तो बोला नहीं, कहता हम तुमसे कह रहे हैं कुछ लाएं तुम्हारे लिए, वलायत जा रहे हैं भाई हम। बड़ा आस्था से शर्माते हुए कहता, हजूर बात यह है कि आते आते कभी थोड़ा लेट हो जाता हूँ, घड़ी होती तो थोड़ा अच्छा होता। कहता ठीक है, एंड दैट वॉज द एंड ऑफ इट। पंडित जी वैन ई वेंट टू लंडन ही परचेज्ड वॉच, सेशर साथ गए थे उसके साथ, सेशर प्राइवेट सेक्रेटरी, तो घड़ी ले आए। नेक्स्ट टाइम ही केम टू प्राइम मिनिस्टर हाउस फॉर दिस हेयर कट, अरे तुम हमसे पूछोगे नहीं क्या हम तुम्हारे लिए घड़ी लाए हैं कि नहीं? ही डिड इट, जाओ सेशन से जाके ना घड़ी ले लो, तुम्हारे लिए हम घड़ी लेके आए हैं, एंड ही फेल्ट सो हैप्पी।
नेहरू को एडवीना माउंटबेटन से इश्क था। कुछ लोग इसे प्लेटोनिक लव कहते थे। जाने माने पत्रकार कुलदीप नैयर ने मुझे बताया था कि नेहरू एयर इंडिया की फ्लाइट से रोज एडवीना को पत्र भेजा करते थे और एडवीना उसका जवाब भी दिया करती थी।
जब मैं हाई कमिश्नर बना तो मैंने कोशिश की कि भाई लॉर्ड माउंटन की बीवी जो है एडवीना और पंडित जी का जो आपस में बहुत इक्वेशन थी तो उसका खोज करूं। तो मैंने लड़की की तरफ से जो ग्रैंडसन था, क्योंकि लॉर्ड माउंटन पैटन का लड़का तो था ही नहीं, तो मैंने उससे कल्टीवेट किया और उससे कहा कि भाई मैं देखना चाहता हूँ जो चिट्ठियाँ हैं। कि मैंने फिर उनसे पूछा, मैंने कहा ये बताओ कि इनकी इक्वेशन क्या थी क्या? तो उसने कहा कि भाई उनका स्पिरिचुअल लव था। फिर मैंने दिल्ली में आके बहुत कोशिश की कि उनकी जो चिट्ठियाँ थीं, पंडित जी हर रोज़ चिट्ठी लिखते थे मिस माउंटबेटन को और उसका जवाब आता था। एयर इंडिया के थ्रू आती थी, तो इसलिए मैं जब हाई कमिश्नर था तो एयर इंडिया से चेक किया, तो कहते हैं हाँ। एक दफ़ा जब वो कहते हैं हमारे से कुछ देर हो गई तो पंडित जी बहुत नाराज़ हो गए थे। मैंने कोशिश की कि ये चिट्ठियों का किसी तरह मुझे पता चले या मैं किताब छापूं, तो उसके लिए उन्होंने फिर आके मैंने पूछा तो कहने लगे जी उसके कस्टोडियन तो मिसेस गांधी हैं, मिसेस इंदिरा गांधी। तो मैंने कोशिश की तो उसका उन्होंने मिस गांधी ने कहा नहीं वो नहीं।
भारत कोकिला सरोजिनी नायडू की बेटी पद्मजा नायडू से भी नेहरू के अंतरंग संबंध थे। 2 मार्च 1938 को पद्मजा को लखनऊ से लिखे एक पत्र में नेहरू ने लिखा था, तुमको देखकर अच्छा लगा और कमसिन होती जाओ ताकि जो लोग बूढ़े हो रहे हों उनकी भरपाई कर सको, एमओ मथाई अपनी किताब में लिखते हैं।
पद्मजा जब भी नेहरू के इलाहाबाद वाले घर आनंद भवन या दिल्ली के तीन मूर्ति भवन में आती थीं, तो नेहरू के बगल वाले कमरे में ठहरने के लिए जोर देती थीं। वो हमेशा लो कट ब्लाउज पहनती थीं। एक बार जब उन्होंने नेहरू के शयन कक्ष में लेडी माउंटबेटन की दो तस्वीरें देखीं तो वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पाईं। उन्होंने भी उस कमरे के फायरप्लेस के ऊपर उस जगह पर अपनी पेंटिंग लगवा दी जहां हर समय लेटे हुए नेहरू की नज़र उस पर पड़ती रहे। जैसे ही पद्मजा गईं, नेहरू ने वो पेंटिंग उतरवाकर स्टोर में रखवा दी। एक बार नेहरू एडविना को लेकर उनकी माँ सरोजनी नायडू के लखनऊ निवास पहुँच गए थे। उस समय नायडू उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थीं और लखनऊ के राजभवन में रह रही थीं। पद्मजा को इससे इतनी जलन हुई कि उन्होंने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया और एडविना से मिलने से साफ इनकार कर दिया।
एक बार नेहरू तीन मूर्ति भवन से दफ्तर जाने के लिए निकले ही थे कि उनकी कार का टायर पंचर हो गया। उस समय प्रधानमंत्री के साथ कारों और सुरक्षा कर्मियों का काफिला नहीं चलता था।
अपने जी बाहर निकलाए चलने लगे, दो सिक्योरिटी वाले, देयर वाज वन कार अवेलेबल। इतने में सरदार जी थे, एक टैक्सी वाले, टैक्सी स्टैंड भी वहां है, भागे हुआ बहुत लेट गया। हजूर आज आप मेरी टैक्सी में चलिए। पंडित जी, हाँ हाँ हम तुम्हारी टैक्सी में चलेंगे। पंडित ने बगैर देखे हुए सिक्योरिटी को, ही जंप्ड इनटू हिज कार और जो लेके साउथ ब्लॉक पहुंच गया। जब साउथ ब्लॉक पहुंच गए तो उतर के जेब टटोलने लगे। जेब में तो दौड़ी भी नहीं थी पंडित जी, ही वुड नेवर कीप एनी मनी इन हिज पॉकेट।
27 मई 1964 को जब नेहरू का निधन हुआ तो उनकी मेज पर रॉबर्ट फ्रोस्ट की ये चार पंक्तियां लिखी हुई मिली थी। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव promises to keep and miles to go before I sleep.
Man mohan van taru mujhko aaj bulate hain kintu kiye jo vaade maine yaad mujhe wo aate hain abhi kahan आराम बदा ये मूक निमंत्रण छलना है अरे अभी तो मिलो मुझको
रेहान फजल बीबीसी दिल्ली।
नेहरू के व्यक्तित्व पर रेहान फजल की विवेचना आपको कैसी लगी लिखिएगा जरूर। और अब वक्त है खेल समाचारों का।
नमस्कार, खेल समाचारों में आपका स्वागत है। भारत और बांग्लादेश के बीच पहला टेस्ट मैच इंदौर में खेला जा रहा है। ओपनर मयंक अग्रवाल के दोहरे शतक के बदौलत भारतीय टीम ने बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी में 6 विकेट पर 493 रन बना लिए हैं। इस तरह उसने बांग्लादेश पर 343 रन की बढ़त बना ली है। मयंक अग्रवाल ने 243 रनों के साथ दोहरा शतक जमाया। उन्होंने अपनी पारी के आखिरी 41 रन सिर्फ 27 गेंदों पर बनाए। मयंक अग्रवाल इस पारी के साथ ही 2019 के सबसे कामयाब बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने इस साल दो दोहरे शतक जमाए हैं और वो ऐसा करने वाले दुनिया के एकमात्र बल्लेबाज हैं। मयंक अग्रवाल अपने करियर का 8वां टेस्ट मैच खेल रहे हैं। उन्होंने अपनी 12वीं पारी में ही दूसरा दोहरा शतक जमा दिया है। इस तरह उन्होंने सबसे कम पारियों में दो दोहरे शतक लगाने के मामले में डॉन ब्रेडमैन को पीछे छोड़ दिया है। मयंक अग्रवाल इस मामले में दूसरे और डॉन ब्रेडमैन तीसरे नंबर पर हैं। खेल समाचारों में आज इतना ही।
और अब मुख्य समाचार एक बार फिर सुनिए कमलेश मठेनी से।
बीबीसी समाचार। महाराष्ट्र में एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस के बीच सरकार बनाने को लेकर कोशिशें तेज हो गई हैं। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा है कि सरकार जरूर बनेगी और पूरे 5 साल चलेगी। चिली में सरकार और विपक्षी दल संविधान बदलने को लेकर जनमत संग्रह कराने पर सहमत हो गए हैं। करीब एक महीने के गृह युद्ध के दौरान प्रदर्शनकारियों की ये मुख्य मांग थी। हांगकांग की एक अधिकारी पर लंदन यात्रा के दौरान हुए हमले को लेकर चीन ने ब्रिटेन की कड़ी निंदा की है। चीन ने इसे भयावह हमला बताया है। इटली के वेनिस में सेंट मार्क स्क्वायर में एक ज्वार भाटे के कारण फिर से बाढ़ आ गई है। हालांकि इस हफ्ते की शुरुआत के मुकाबले बाढ़ के पानी का स्तर कम है, लेकिन ये अब भी पिछले दशकों में सबसे बुरा है। श्रीलंका के मुख्य मतगणना केंद्रों पर कम से कम 50 चुनाव अधिकारियों को फूड पॉइजनिंग के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया है। श्रीलंका में कल राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान होना है। बुरुंडी में विपक्षी दल की एक नेता का शव एक जंगल में मिला है। ये शव CNL पार्टी की महिला इकाई की उप प्रमुख का है। BBC समाचार।
दिन भर के इस अंक में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरें और विश्लेषण लेकर BBC हिंदी रेडियो फिर पेश होगा कल सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत में। इस कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे रविशंकर। अब कुलदीप मिश्र को दीजिए अनुमति। नमस्कार।